भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती है। आन के समय परमात्मा के सिवा और किसी का भी चिंतन नहीं करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप आने में क्यों देरी कर रहे हो, मेरी तरफ देखते हो क्या? मैं तो दीन हूं और आप दीन बंधु हैं, आप तो अपने दासों के दोषों को देखते ही नहीं हैं। अगर आप मेरे दोषों की तरफ देखें तो मेरा कहीं टिकाव नहीं है। ऐसे करुणा भाव से पुकारे, हे नाथ, हे हरि, भगवान विशेष रूप से सुनते हैं। विश्वास रखो कि भगवान का आह्वान करने पर भगवान चले आते हैं। भगवान के अंदर विशेष करुणा टपकती है, कृपा करने की इच्छा होती है तो वो बिना चाहे भी दर्शन दे सकते हैं। भगवान का ध्यान करने में मनुष्य स्वतंत्र है। भगवान के कीर्तन के प्रभाव से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सब विघ्न बाधा भाग जाती है। शरीर का सुख और आसक्ति ये परमात्मा की प्राप्ति में महान विघ्न है। आसक्ति करो तो परमात्मा में करो, वैसा सुख और कहीं नहीं है। संसार की आसक्ति भय और जन्म मरण देने वाली है। इस संसार की आसक्ति को विवेक और विचार से हटाना चाहिए। भगवान का जप, भगवान का ध्यान और सत्शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग ये बहुत दामी साधन है, मामूली नहीं है। दुखियों की निष्काम भाव से सेवा करना, मन और इंद्रियों का संयम रखना, संसार से वैराग्य होना, ये तो बहुत ही आवश्यक है। चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भगवान का जप हो, निष्काम भाव से सेवा करनी, मन इंद्रियों का संयम रखना और संसार से वैराग्य रखना। वैराग्य होने से सब काम अपने आप हो जाएंगे। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। सो ये जवानी की उम्र में गफलत का परिणाम है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। एक कहानी याद आई। एक बनिए को एक महात्मा ने कहा कि भगवान का भजन किया कर। बनिए ने कहा, महाराज मुझे दुकान से ही फुर्सत नहीं है, कहां से भजन करूं। फिर महात्मा के कहने से बनिए ने विचार किया कि किस समय भजन करूं, कौन सा समय खाली है, जिस समय दुकान नहीं जाऊं, कोई व्यापार भी नहीं हो, ऐसा कौन सा समय है। तब उसको नाने का समय याद आया। ये नाने का समय ऐसा है, उस समय मैं दुकान तो जाता नहीं, काम है नहीं। तो वो नाने के समय भगवान का नाम लेने लगा। ऐसे उसने ये नियम बना लिया, वे नाते समय भगवान का नाम ले लेंगे, बस इतना ही हो पाएगा। अकस्मात उसके मरने का समय आया तो मरते समय स्नान कराते हैं तो उसको राम राम उसकी आदत पड़ गई, उसने नाम लिया, कल्याण हो गया। भगवान के नाम का ऐसे उपेक्षा से भी लिए हुए व्रत से इतना बड़ा लाभ है। इसलिए भगवान को हर समय याद रखना चाहिए। परिश्रम नहीं है, खर्चा भी नहीं है। अब उस बणिए का नहाने के समय में नाम लेने का अभ्यास हो गया और कल्याण हो गया, इससे बढ़कर क्या कहें। विशेष बात आप लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई आदमी मरता हो उस समय में घर में चिड़िया कौवा और भी कोई पशु पक्षी शब्द करते हो, आवाज करते हो, तो हटा दो उनको। मरने वाले से कुछ भी संसार की बात मत कहो। अगर उसका ध्यान अंदर ही अंदर परमात्मा में लगा हुआ होगा और आपने उसके पास संसार की बात चला दी तो आप इसका कितना बड़ा नुकसान करते हैं। उसका अगला जन्म हो जाएगा। मरने वाले को भगवान की याद दिलाओ, संसार की बात उससे बिल्कुल ही मत करो। कोई कहे कि ये तो पापी आदमी है, इसको क्या नाम सुनाए। मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, उसे मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण यदि हो जाए तो निश्चित कल्याण है। इसमें आप लोग संदेह मत करो। भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती है। इसके लिए 5 चीजों का एकदम त्याग करो। खाना पीना सोना और टट्टी पैसा, इन 5 चीजों को तो एकदम त्याग करो और 2 चीज को ग्रहण करो, भगवान का नाम जप और भगवान का ध्यान। ऐसे 24 घंटा करते रहेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पक्षी तथा जानवरों की बोली में मरते समय उसका मन वहां चला जाए तो उसका एक जन्म अवश्य होगा। इसलिए किसी के मरने के समय पक्षी तथा जानवरों का शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। यदि मृत्यु के समय कुत्ते की आवाज सुनाई दे और उधर यदि मरने वाले का मन कुत्ते की तरफ चला गया तो कुत्ता हो जाता है। चाहे मरने वाला कैसा भी उच्च कोटि का साधक क्यों न हो, इसलिए बहुत सावधानी रखो। अंत समय में उसको भगवान की स्मृति रहे ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या ऊन के आसन पर, स्वस्तिक सिद्ध या पद्मासन किसी भी आसन से स्थिर सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके स्फुरणा रहित हो जाए, आलस्य रहित होकर और वैराग्य युक्त होकर पवित्र चित्त से भगवान इष्ट देव का आह्वान करे और ये भी ध्यान रखे कि अब भगवान हमारे ध्यान अवस्था में आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। ऐसे पूर्ण उत्सुकता और आश्वासन के साथ ध्यान करे। चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर साफ दिखेगा। जहां मन में शांति होती है वहां विक्षेप नहीं होता और जहां ज्ञान की दीप्ति होती है वहां निद्रा आलस्य नहीं होता। कितनी गहरी बात है। जहाँ ज्ञान जागृत होता है वहां निद्रा आलस्य नहीं आते, और जहां शांति होती है वहां पर मन यानी लगता है, इधर उधर घूमता है, ये बातें नहीं होती। विश्वास रखो, आपके द्वारा की हुई स्तुति और प्रार्थना भगवान सुनते हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास रखो। अपने इष्ट देव के बहुत ध्यान से सुना, ये लेख बहुत ही जरूरी है। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कठिनाई नहीं है, आप इसको कठिनाई के क्षेत्र से बाहर निकाल दो। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान तो बड़ा सुगम होता है, बिना देखी हुई चीज का कैसे ध्यान करें, तो आपकी बात ठीक है, परंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर, अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर ध्यान बड़ी सुगमता से हो सकता है, क्योंकि आपके इष्ट देव सर्वव्यापक हैं, तो जिस चित्र को देखकर आपने मन में रख लिया उसमें आपका इष्ट देव का निवास है और वो सत्य है। इसलिए साधक को चाहिए कि नेत्रों को मूंद कर अर्थात यूं बंद कर अपने इष्ट देव परमेश्वर का आह्वान करे। देखो, नेत्रों को मूंदने के लिए भी कहा है कि जोर लगा के बंद नहीं करे, ऐसे जोर लगा के नहीं, स्वाभाविक बंद करें। जोर लगा के बंद कर दे या जोर पड़ता है या नसों में, तो फिर नेत्र खोलने की इच्छा होती है, स्वाभाविक बंद रहे, इसको बोलते हैं मूंदना। नेत्रों को मूंद कर अपने इष्ट देव परमेश्वर का आह्वान करें, और साधारण आह्वान करने से न आवे तो फिर उनका नाम गुण कीर्तन दिव्य स्तोत्र और प्रार्थना करें, और श्रद्धा पूर्वक गदगद भाव से फिर भगवान का आह्वान करें, भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखें, आएंगे जरूर आएंगे, और इस चौपाई का उच्चारण करें, एक बात मैं पूछूं तो ही कारण कवन बिसारे मोही। फिर ये विश्वास करना चाहिए कि अब हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सन्मुख आ गए हैं और हमारे से करीब 2 फुट की दूरी पर प्रत्यक्ष खड़े हैं, और फिर चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान का मूर्ति का अवलोकन करें, और फिर ये चौपाई पढ़े, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से रहित हूँ, आपने मुझे दीन जान करके दया की है, अर्थात मैंने तो कोई साधन किया नहीं, आपके बल पर ध्यान, जिसके बल पर ध्यान में आपके दर्शन हो सके, आपने मुझे दीन गरीब जान करके दर्शन दिए, वाह भगवान बड़ी कृपा की। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यानावस्था में भगवान से फिर बातचीत प्रारंभ करे। साधक पूछे, हे प्रभु, आप ध्यानावस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं? जो ही हम आपको पुकारे त्यों ही आप क्यों नहीं आ जाते हो? इतना तरसाते क्यों? भगवान कहते हैं, तरसाने में तुम्हारा परम हित है। साधक, तरसाने में क्या हित है प्रभु, मैं समझता नहीं, मैं तो आपके पधारने में हित समझता हूं। भगवान, विलंब से आने में विशेष लाभ होता है, तुम्हारे अंदर विरह व्याकुलता बढ़ती है, उत्कट इच्छा होती है, उस समय आने में विशेष आनंद आता है, जैसे विशेष भूख लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साधक, अच्छा ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है ना। भगवान, ओ यदि मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक मुझसे उकता कर ध्यान छोड़ सकता है उसको दर्शन देकर हम करें भी क्या। साधक, ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी और साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ आना चाहिए। भगवान, देखो उचित तो वही है जो मैं समझता हूं और मैं वही करता हूं जो उचित होता है। मेरे लिए क्या उचित है ये बात तुम कब से कहने लग गए। साधक, प्रभो मुझे तो वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु ये मन बड़ा पाजी है, ये मानने नहीं देता। आप कहते हैं वो बात अक्षर से सही है, फिर भी जाने क्यों मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाए। ये बतलाइए वह कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ जाते हो। भगवान, गोपियों के भांति जब साधक मेरे लिए विरह से तड़पता है तब वैसे ही आ सकता हूं, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र के भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूं, अथवा प्रह्लाद के समान सर्वथा निष्काम भाव से भजने वाले के लिए आ सकता हूं। तुम्हारे अंदर अभी इन सब चीजों की कमी है। साधक, विरह से व्याकुल करके आते हैं ये आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हो? भगवान, विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति होती है। विरह व्याकुलता से प्रेम बढ़ता है और फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसके लिए मेरी प्राप्ति होती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता नहीं है। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर उसने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। साधक, आपको कभी कार्य होता तो आप प्राय लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते हैं, भरत को नहीं, इसका कारण क्या है? बस बताया ना, प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता है। साधक, तो फिर उन्होंने 14 साल तक आपका वियोग कैसे सहन किया? भगवान, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से उनकी प्रेम की लगातार वृद्धि होती गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं मिला तो मिला ही मिला, फिर मेरे से वियोग नहीं हुआ। साधक, पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा? भगवान, 14 साल तक विरह सहन करने से वह विरह और मिलन के तत्व को जान गया कि मिलना क्या होता है और विरह क्या होता है। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसके लिए एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना घनिष्ठ आकर्षण नहीं होता। साधक, विरह और व्याकुलता से निराशा तो नहीं हो सकती ना, तो ये मैं कह चुका हूं। जो ऐसे व्याकुल होता है, निराश हो जाता है, फिर उसको मेरे दर्शन की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। तो ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? श्रद्धा और प्रेम की बढ़ोतरी करनी चाहिए। क्या आप बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन नहीं दे सकते भगवान? हां, नहीं दे सकते। ये नीति भी है, कायदा भी है। साधक, क्या आप थोड़ी बहुत हमारे जैसों के लिए रियायत कर दोगे? भगवान, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए, ये तो विषमता का दोष है। सब पर रियायत नहीं हो सकती। साधक, क्या रियायत कभी किसी पर हो सकती है? हां, भगवान कहते हैं हां। कब? अंतकाल के लिए रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, बिना विरह, बिना व्याकुलता से भी यदि मेरा नाम स्मरण करता है तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक, उसके लिए इतनी विशेष रियायत क्यों रखी गई? क्योंकि कोई कोई ऐसे भी तो होते हैं कि वो जीवन भर आपसे विमुख रहे, उनको आप रियायत देकर के क्या अच्छा करते हैं? और जो उम्र भर आपका भजन करते हैं, अंतिम समय में चूक जाते हैं, उनके लिए रियायत देनी चाहिए? भगवान, जिसका जीवन समाप्त हो रहा है, सदा के लिए वे मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, जाने कितने जन्मों के बाद उसके कर्मों से मानव शरीर मिलेगा, उसके वास्ते ये खास रियायत रखी गई है। फिर तो जो सारे जीवन भजन करते हैं और अंत में आपको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अंत समय में जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, अंत समय में भूल जाए, ऐसा होता नहीं है। साधक, हाँ, ये तो उचित है। अंतकाल के लिए उसको विशेष रियायत दी, अच्छी बात है। किंतु एक धोखा है, अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रह पाती, अतएव उस समय उसका स्मरण करना बस की बात नहीं है, तो फिर आपकी रियायत क्या काम आई? भगवान, तभी तो मैं बोलता हूं कि मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करो। ऐसा जो अभ्यास करेगा उसको अंत समय में अवश्य स्मृति हो जाएगी। साधक, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, किंतु मैं तो इस चंचल और उद्दंड मन के सामने हार गया हूँ। मेरी कोई कोशिश चलती नहीं है, इसके लिए कोई सरलतम उपाय बताओ। भगवान, बहुत सरल उपाय बताता हूँ। जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए, वहीं पर मेरा स्वरूप देखने लग जाओ, क्योंकि मेरा स्वरूप तुम्हारे मन को छोड़कर नहीं है। जहां तुम्हारा मन जाएगा, वहां पर मेरा स्वरूप विद्यमान है। अथवा उसको लौटाकर, वापिस मेरे प्रेम से लौटाकर, समझाकर पुनः मेरे में लगाओ। दोनों में से जो तुमको सुगम मालूम दे वही करो। साधक, प्रभु, ये बात मैंने सत्संग में सुनी है, पढ़ी है, मैं समझता भी हूं, किंतु जिस समय मन वेग से संसार में जाता है, उस समय ये युक्ति मुझे याद ही नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं होता, क्या करें? भगवान, देखो, उस समय आप इस बात को ढूंढो कि मेरी कहीं संसार में आसक्ति है। जहां आसक्ति होती है, वहीं पर ये मन जाता है। इसलिए आसक्ति के कारण तुम्हारी बड़ी बुरी आदत पड़ गई। आसक्ति का नाश करो, आदत को सुधारो, महापुरुषों का संग करो और नाम जप का अभ्यास करो। साधक, ये तो यत्किंचित किया जा सकता है और इससे लाभ भी लिया जा सकता है, पर मेरे भाग्य में न तो नाम जप का अभ्यास है, न मेरे भाग्य में महापुरुषों का संग है और न मेरे भाग्य में आदत सुधारने की बात है, क्या करूं? भगवान, इसमें दुर्भाग्य नहीं चलता है, इसमें तुम्हारी कोशिश की कमी है, इसमें दुर्भाग्य नहीं चलता है। साधक, प्रभु, क्या भजन और सत्संग कोशिश से होते हैं? सुना है कि जन्म जन्मांतर के अनेक अनेक पुण्य इकट्ठे होते हैं तब सत्संग होता है, और आप कहते हो कि कोशिश की कमी है, दुर्भाग्य की कोई बात नहीं। भगवान, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वो अवश्य फलीभूत होती है, इसमें भाग्य की कोई बात नहीं है। यदि मेरे भजन में और सत्संग में कोई कुसंग, आसक्ति और संचित कोई बाधा हो, डालते भी हैं, तो उसके तीव्र अभ्यास से अर्थात नाम के अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है, फिर विघ्न बाधाएं नजदीक भी नहीं आती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, नवीन शुभ कर्मों के होने में भाग्य बाधा नहीं डालता। जो बाधा प्राप्त होती है वह साधक की कमजोरी से होती है, दुर्भाग्य से नहीं होती। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करो, मेरी कृपा से सत्संग मिल ही जाएगा। साधक, प्रभु, बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता है तब वो भाग्य को ही कोसते हैं, भाग्य की निंदा करने लगते हैं, ये कहां तक ठीक है? भगवान, ठीक है, किंतु इसमें धोखा बहुत बड़ा है। साधन में ढीलापन आता है, जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना प्रयत्न करने पर भी सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता है कि भाग्य की कमी है। परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बन करके परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। महाराज जी ने कहा था कि ये जो पुस्तक है ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, बड़ी पुस्तक है, उसमें छोटा करके दिया है। इस पुस्तक को तो जैसे कोई गोस्वामी जी महाराज की प्रश्न सलाकाएं है उसके अनुसार ये मंत्रात्मक है ये पुस्तक। इसका तो जितना अध्ययन किया जाए, गहराई में जाए, उसको साधन में बहुत बड़ा लाभ होता है। ये महाराज जी ने खुद ने कहा, सेठ जी की पुस्तक ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।